पाल कोट कैसेट में तो जमीन में गड़े में गड़ा में सीता आत्मा है यहाँ वो थोड़ा
ये आसपास वाले बंदे को समझा दो बात को। किसी को समझ में आया हो तो बताओ क्या पूछा इन्होंने। बताओ बताओ बताओ
डिस्कशन में बाबा ने बोला ना जमीन में गड़ा में सीता आत्मा आया है।
जमीन के अंदर से सीता निकली तो
गड़ा में अंदर आया आत्मा ऐसे डिस्कशन में बोला बाबू।
पांच तत्व जड़ है और आत्मा चैतन्य है, परंतु जो पांच जड़ तत्व हैं उनको शास्त्रों में देवता के रूप में भी दिखाया गया है। क्या पृथ्वी माता देवी के रूप में दिखाई गई ना, वायु देवता अग्नि देवता ये देवता के रूप में नाम तो दिए गए हैं ना। ये प्रकृति के पांच तत्व हैं जो जड़त्वमयी है। उन पांचों तत्वों में मुख्य तत्व है पृथ्वी, वो सारी मनुष्य सृष्टि की माता है। सिर्फ मनुष्य सृष्टि की ही नहीं, जो भी जड़ चेतन है उन सब की माता है। और माता जैसे भारत माता कहा जाता है, भारत माता की जय, तो कोई जमीन की जय की जाती है या कोई चैतन्य माता हुई होगी, जरूर कोई चैतन्य माता हुई है। ऐसे ही पृथ्वी माता भी है और वो पृथ्वी माता माता है तो जरूर बाप भी होगा, है होगा या नहीं। इसलिए वेदों में मात पिता दोनों का नाम आया है द्यावा पृथ्वी। ढेर सारी ऋचाएं हैं, द्यावा कहा गया है द्युलोक जो स्वयं प्रकाशित लोक है, वहां से सूर्य उदय होता है। सवेरे जब सूर्य उदय होता है तो चारों ओर सूर्य के कालिमा होती है या लालिमा होती है, लालिमा होती है जहां से सूर्य का उदय होता है। तो वो ज्ञान सूर्य हमारा बाप है और पृथ्वी हमारी माता है, परंतु पांच जड़ तत्वों में से एक मुख्य तत्व है माना माता तो है लेकिन जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। कैसे कहें जड़त्वमयी बुद्धि वाली है, जो चैतन्य बुद्धि होगा वो बाप को जल्दी पहचानेगा और परमानेंट पहचानेगा या जड़त्वमयी बुद्धि वाला पहचानेगा? जो चैतन्य होगा, जितना बुद्धि में चित्त शक्ति होगी उतना ही बाप को पहचानने वाला होगा। नहीं पहचानने वाला होगा उसकी भी निशानी है, और पहचानने वाला होगा उसकी भी निशानी है। क्या निशानी है? कि जो जितना बाप को पहचानेगा उतना उसकी श्रीमत पर चलेगा, और जितना नहीं पहचानेगा उतना श्रीमत पर नहीं चलेगा। तो सूर्य तो इतना गर्म है, इतना प्रकाशित है, और माता पृथ्वी स्वयं प्रकाशित नहीं है। और इतनी गर्म भी नहीं है, क्योंकि चारों ओर सागर से घिरी हुई है। तीन हिस्सा सागर और एक हिस्सा पृथ्वी दिखाई देती है। इसलिए ठंडी है, स्वभाव संस्कार में मोस्टली ठंडास भरी हुई है, इसलिए उस पार्टधारी का नाम सीता दिया हुआ है। शीतल स्वभाव की है, माता का पार्ट है। चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी धर्म खंड का हो, कहाँ पल रहा है? भारत में पल रहा है, पृथ्वी माता पर पल रहा है, पृथ्वी माता की गोद में पल रहा है। उसका नाम शास्त्रों में सीता दिया है। उसका पति राम कहा गया है। रघु कुल का कहा गया है। राम सूर्यवंशी, माता शीतल, परंतु वो शीतल माता रावण के चंबे में क्यों आ जाती है? श्रीमत की लीका का उल्लंघन किया तो रावण के चंबे में आ जाती है। और रावण के जो चंबे में आ जाती है सीता, उसका जन्म कहां से होता है? गढ़े से होता है। क्या घड़ा कोई और चीज नहीं है? संस्कृत में कहते हैं कलश। कोई अनुष्ठान करते हैं, कथा वार्ता करेंगे, शादी वादी करेंगे, कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो घड़े की स्थापना, कलश की स्थापना करेंगे। तो वो कलश कोई दूसरा कलश नहीं है। क्या कौन सा कलश है? ज्ञान कलश है। बाबा भी कहते हैं तुम सब सीताएं हो, कैसे पैदा हुई हो? है ज्ञान कलश से पैदा हुई हो। तुम सब द्रौपदियां हो, कैसे पैदा हुई? आदमी से कहीं कोई पैदा होता है? आग के कुंड से कोई पैदा हुआ, हो रहा है कोई नहीं? क्या मतलब हुआ? कंपिल में वो द्रौपदी कुंड बनाई दिया है कि राजा द्रुपद ने अग्नि कुंड में आहुतियां दी तो कुंड में से द्रौपदी का जन्म हुआ। वहां जो जन्म हुआ है वो वास्तव में अग्नि कुंड से जन्म हुआ या ज्ञान से जन्म हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रैक्टिकल बात है या सिर्फ हवा की बातें हैं? प्रैक्टिकल बातें हैं। ज्ञान के आधार पर जन्म होता है और इतना पक्का ज्ञान है कि सारी दुनिया भले कहे ये शरीर रूपी नैया डूब जावेगी, लेकिन बाप और बाप के जो पक्के बच्चे होंगे वो यही कहेंगे नैया डोलेगी हिलेगी लेकिन डूबेगी। वो द्रौपदी रूपी नैया, उसे घड़ा कहो नाव कहो, ज्ञान का कलश है। उसमें जितना ज्ञान का कलश भरा हुआ ज्ञान भरा हुआ है उतना ज्ञान बेसिक नॉलेज और एडवांस नॉलेज के कोई भी धुरंधर में नहीं होगा। और उस ज्ञान कलश की पैदाइश पृथ्वी से दिखाई गई। कलश कहां से पैदा हुआ? मिट्टी से। और जब अंत समय आता है तो कहां मिल जाता है? धरणी में ही समा जाता है। वो है ही धरणी। इसलिए शास्त्रों में सीता का जन्म पृथ्वी के अंदर घड़े से दिखाया गया और
कलश तो पांच करते पांच कलश प्रतिष्ठा।
वो ज्ञान कलश है कौन? जिसको लक्ष्मी धारण करती है, सागर में से निकलता है। सागर मंथन न हो तो वो कलश प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। वो ज्ञान का कलश कौन है? आज मुरली में उसी की चर्चा हुई है। उस ज्ञान कलश की चर्चा हुई है जहां से सीता का जन्म होता है। कौन है ज्ञान कलश? ये बुद्धि को क्या कहा जाता है? घड़ा। बुद्धि रूपी क्या है? घड़ा है। इसमें क्या भरा हुआ है? ज्ञान। तो वो कौन सा ज्ञान कलश है जो सागर मंथन से निकला है? अरे जल्दी बताओ प्रजापिता। प्रजापिता में उस सुप्रीम सोल को नहीं पहचाना। कहां से जन्म हुआ? मिट्टी के घड़े से जन्म हुआ। बाबा भी मुरलियों में बार बार बोलते रहे, जब गोद में आते हैं बच्चे या बच्चियां तो उनसे पूछते थे किसकी गोद में आए हो? अगर कहते कि हम ब्रह्मा की गोद में आए हैं तो आगे तो फेल। और जिनकी बुद्धि में रहता हम शिव बाबा की गोद में आए हैं तो पास। तो अपनी अपनी भावना की बात है। कोई तो रथ को पकड़ लेते हैं और उस रथ में सुप्रीम सोल को नहीं पहचान पाते, और कोई रथ के अंदर किसको पकड़ते हैं? सुप्रीम सोल को पकड़ते हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग की याद हो जाती है, फिर छोड़ने का सवाल ही नहीं, बिछोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और
ये माता जी बताती है शिव शिव तो बिंदु है, वो साक्षी होके कैसा देते हैं? एक मुरली में आया शिव तो साक्षी होके देते हैं।
शिव कुछ भी करता है, अच्छा करता है या बुरा करता है, नहीं नहीं, जो भी करता है वो साकार में आकर के संसार में उस गुण को प्रत्यक्ष करता है या परमधाम में बिंदु बन करके प्रत्यक्ष करता है? तो साक्षी दृष्टा परमधाम में है या इस सृष्टि में कोई मुकर्रर रथ में आता है तब साक्षी दृष्टा बनता है? कैसे बनता है?
वो तो आधा या दस साल ऊपर ही रहता है ना,
वो हमेशा ऊपर ही रहता है, अभी नीचे नहीं आया हुआ है। हाँ, तो जब नीचे आता है तब साक्षी दृष्टा के रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। साक्षी दृष्टा का मतलब है पार्शियलिटी नहीं है, साक्षी होकर के जैसे जज को देखना चाहिए ऐसे देखता है। मनुष्यों में पार्शियलिटी होती है, भगवान में पार्शियलिटी नहीं होती है। जिसमें पार्शियलिटी होगी उसको साक्षी दृष्टा नहीं कहेंगे। तो ऐसा गुण जो आकर के दिखाता है वो इस दुनिया में प्रत्यक्ष होता है या परमधाम में जाकर साक्षी दृष्टा प्रत्यक्ष होता है? है, इस दुनिया में आकर प्रत्यक्ष होता है। तो साकार तो चाहिए ना। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस साकार में आता है और बाप के रूप में मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, वो रथ एकदम साक्षी दृष्टा नहीं बन सकता। उसको भी स्वार्थी से 100% परमार्थी बनने के लिए टाइम चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो जब वो 100% परमार्थी बन जाता तब साक्षी दृष्टा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, तब तक गुप्त रहता है। सिर्फ दुनिया वालों के सामने ही नहीं, बच्चों के सामने भी नंबरवार गुप्त पार्ट बजाता है। कितने बच्चे पहचान पाते अंत में? 8 बच्चे हैं जो साक्षी दृष्टा की स्टेज को सबसे जास्ती धारण करते हैं, वो ही पहचानते हैं।
बाबा क्यों बच्चों के सामने भी गुप्त रूप में पाठ
करते? बच्चे एक जैसे हैं कि नंबरवार है? नंबरवार है।
बाबा, वो तमिलनाडु एक गांव में दिंडीवनम में काल भैरव का मंदिर है।
काल भैरव?
हाँ। वो मंदिर महीने में एक बार अष्टमी का दिन रात 12 बजे कोई पूजा करते
हैं,
और कभी भी नहीं करते, उसका व्यय करते
हैं। महाकाल का नाम तो सुना है, है? सुना है महाकाल, कालों का काल। वो महाकाल जो है कालों का काल, वो पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा तो होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? वो कौन सी आत्मा होगी? नहीं, बाप तो हमेशा प्यार का सागर है, मार का सागर है,
प्यार का सागर
है, प्यार का सागर है। ये ब्रह्मा की सोल बहुत प्यार करती भी है, लेकिन जब अपने स्वरूप को पहचान लेती है तो प्यार व्यार सब छोड़ देती है। जिन्होंने बहुत दुख दिया है माँ के रूप में पार्ट बजाते समय, उनकी अच्छी तरह धुनाई पिटाई भी करती, तब उनके मुख से निकलता है कानों का काल महाकाल, और वो महाकाल काल भैरव कहा जाता है। प्रश्न की आत्मा का गायन कौन से दिन का है, तो वहां अष्टमी को विशेष मान्यता है। और
पर वो अपने से उनका पुरस्कार की जो है ब्रह्मा बाबा,
हाँ?
जो अपने से उनका पुरस्कार की जो है अष्टम दिन के बाद जो आते हैं नौवा दसवा या बारहवा, उनको दंड देने का अधिकारी कैसे
है,
उनको भी दंड देने का अधिकारी
कैसे, इनको
अष्टदेव
अष्टदेवों को दंड देने का अधिकारी है। हाँ, जो भी बाद वाले हैं,
बाद वाले
हाँ,
वो ब्रह्मा बाबा से भी ऊंचा पुरुषार्थी
है, वो ब्रह्मा बाबा से
ऊंचा पुरुषार्थी
है, ऊंचे पुरुषार्थी है। कैसे,
बारह आत्मा ये भी ब्रह्म, ये भाई पूछने का,
हाँ,
ब्रह्मा से ऊंचा पुरुषार्थी है,
क्यों,
सूर्य उठी का बारह है,
वाह, जो विश्व पिता है संसार में विश्व पिता के रूप में प्रत्यक्ष होता है, उस बाप का बाप समान बच्चा पहले कौन बनता है, कौन है, कृष्ण बच्चा, उस बच्चे को बाप आत्मसात करके रहता है, क्या बाप समान बच्चा बन जाता है, ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा ही जाती है पहले और आती है पहले, नहीं, बाप के साथ ही बच्चा जाता है और साथ ही आता है, उसका भी गर्भ पहले से तैयार होता है और बाप का भी शरीर पहले से ही बर्फ में तैयार होता है, दोनों आत्माएं साथ साथ आवेंगी कि आगे पीछे आवेंगी, बाप दादा साथ ही है या आगे पीछे है, अभी भी साथ ही है और आगे भी साथ ही रहेंगे, इसलिए मुरली में भी बोलते हैं कि धर्मराज मेरे साथ है, ऐसे नहीं मैं आगे हूं और वो महाकाल पीछे है, नहीं, ये दोनों साथ ही हैं। और
ब्रह्मा तो शरीर है, पर ब्रह्मा तो शरीर नहीं ना, वो तो कैसे आगे बर्फ में शरीर बनता है,
है?
ब्रह्मा तो शरीर है भी,
हाँ,
ब्रह्मा तो शरीर नहीं ना, वो तो कैसे बर्फ में शरीर में आते,
उसका अपना सूक्ष्म शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है या नहीं, जब परमनाम आत्मा जावेंगी तो सूक्ष्म शरीर धारी जो ब्रह्मा की आत्मा है वो प्रजापिता के साथ जावेगी या बाद में जावेगी, साथ ही जावेगी, और जब उतरेगी तो गर्भ में उतरेगी, क्या वो गर्भ धारण करने वाली आत्मा कहाँ होगी, बर्फ के अंदर होगी, और है
धारण करने वाली आत्मा,
हाँ हाँ, वो तो शरीरधारी होगी ना, और
तमिलनाडु में मुर्गा का टेंपल ज्यादा होता है, ज्यादा
मुर्दा जड़ होता है या चैतन्य होता है,
मुर्गा
माना कार्तिकेय
है,
मुर्गा माना कार्तिकेय,
मुर्गा मुर्गा
कार्तिकेय,
मुर्गा उसे कहा जाता है जो सवेरे ही सवेरे दूसरों को जगा देता है और खुद सो जाता है। क्या मुर्गेश भी कहा जाता है। मुर्दा का खास काम क्या है? सवेरे सवेरे सबको जगा देना और खुद सो जाना। विदेशी क्या करते हैं? है? विदेशी बाप को पहचानते कि नहीं पहचानते हैं? पहले विदेशी पहचानते हैं या स्वदेशी? विदेशी की बुद्धि तीखी होती है, वो जल्दी बाप को पहचान लेते हैं, फिर बाद में सो जाते हैं। तो ऐसे ही है कि जो राम के तीन और भाई हैं वो विदेशी हैं या स्वदेशी? है विदेशी। और उन विदेशियों में मुख्य कौन है? है इस्लामी। जो छह मुख्य धर्म हैं भगवान बाप से प्राप्ति करने वालों की लिस्ट में, उन छह में वो मुखिया है। इसलिए कार्तिकेय को सुब्रह्मण्यम को छह मुख दिखाए जाते हैं। वो एक मुख से नहीं बात करता है, छह मुखों से बात करने वाला है। माने एडवांस में वो आत्मा जब आती है और इस्लाम धर्म का मुखिया प्रत्यक्ष भी होती है तो भी राम का मुख्य भाई होते हुए भी वो सब धर्मों में चक्कर लगाती है। ऐसे नहीं एक राम बाप का बन के रहती है, बार बार और धर्मों में चक्कर काटती है, बार बार बाप के पास आकर के भट्टी करती है, फिर बार बार उसी भक्ति मार्ग के क्रियाकलापों में घुस जाती है। तो वो कहा जाता है मुर्गेश और
बाबा भक्ति मार्ग में विष्णु का छाति पर दुर्गस महामुनि पाव से मारते थे, वो देखते थे क्या?
खूब टीवी देखे रहो और टीवी में पता नहीं ऐसी कितनी कितनी बातें आती हैं शास्त्रों की, जिनका आता पता कुछ भी लगता ही नहीं। क्या पूछा?
भक्ति में विष्णु के छाते पर पाँव रखते हैं, इसे इस
जब दुर्वासा है उनकी जो वाचा है उसमें बास भरी हुई है, बदबू भरी हुई है या खुशबू भरी हुई है? बास, बास आ रही है, बदबू भरी हुई है क्रोध की। तो जिसकी वाचा में क्रोध की बदबू भरी हुई होगी, जैसे महाकाली की जीभ बाहर दिखाई गई है, जगदम्बा को वाक देवी भी कहा जाता है। काय की देवी? वाक, वाचा की देवी। तमो प्रधान बनती है तो जीव से सबसे ज्यादा काम करती है। क्या माया से हाथ तो मिलाती है प्रकृति, लेकिन सबसे जास्ती जो विनाश का कार्य करती है वो काय से करती है? जीव से, वाचा से। तो ये वाचा जब क्रोध वाली बन जाती है तो चाहे शंकर जी के ऊपर पांव रखे और चाहे कृष्ण के ऊपर पांव रखे, बात तो एक ही हो जाती। वो ही संगम युगी कृष्ण है, वो ही संगम में संसार में शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। और
जो मोहनतपुर में जगह ले रहे हैं ना, वो उनके मना बाप पर निश्चय नहीं है, इसलिए ले रहे हैं।
बाप का निश्चय नहीं इसलिए जगह ले रहे। अरे बाप ने तो मुरली में बोला है सारा ही माउंट आबू खरीदना पड़ेगा, तो बिंदी बाप खरीदेगा क्या क्या है? जिनके पास धन है आज तो मुरली में बोला, जिनके पास धन है वो धन की सेवा करे। अगर अंदर से ये बात बार बार आती है कि कंपनियां सारी फेल हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है, बीमा कंपनी भी फेल हो जाती है। गुजरात में 2001 में विनाश हुआ, भूकंप आया, कोई भुज में कच्छ में कोई बीमा कंपनी ने किसी ने किसी को पैसा दिया नहीं दिया, बीमा कंपनी ही उड़ गई। तो कंपनियां फेल होती जा रही हैं, बैंकें भी फेल होती जा रही हैं। बाबा ने भी बोला किसकी दबी रही धूल में, जमीन में गाड़ के रखेंगे, जमीन हिलेगी पता नहीं कहां का कहां पहुंच जाएगा, तो मिलेगा। किसकी राजा खा इनकम टैक्स किसी को छोड़ने वाला नहीं, अभी तो कंप्यूटर का जमाना आ गया, चाहे कितने भी नाम बदलो लेकिन कंप्यूटर ऐसा है कि वो जो हस्ताक्षर है ना, तुम नाम बदले हुए हस्ताक्षर करोगे तो भी हस्ताक्षरों को पकड़ लेगा, भले नाम बदला हुआ हो। तो राजा जरूर खाएगा, भ्रष्टाचारी राज है या शिष्टाचारी राज है? भ्रष्टाचारी राज है, इनकम टैक्स सारा ही खाएगा आगे चल के। लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे तो चोर चकार बढ़ेंगे कि नहीं, चोर लुटेरे डकैत बढ़ेंगे कि नहीं, वो भी बढ़ेंगे, चोर लूट लेंगे। तो क्या करना चाहिए है? बाबा ने तो बोल दिया कि विनाश होगा तब तुम बच्चे हाँ आबू पहाड़ पर बैठे बैठे सारी दुनिया का विनाश देख रहे होंगे। इसका मतलब दुनिया में विनाश बरपा होगा, लेकिन जो तपस्या भूमि है उसमें छोटा मोटा विनाश कोई काम नहीं कर पाएगा। हाँ जब लास्ट विनाश होगा तब तो हम खुद ही नई दुनिया में पहुंचेंगे कि वही बैठे रहेंगे, तो तब तक किसी को अपनी सफल करनी हो फालतू पैसा कहाँ डालें, बैंकों में डालें या नहीं डालें, ये ऐसा इस बैंक का हो गया, उस बैंक का वैसा हो गया, ये कंपनी फेल हो गई, वो कंपनी फेल हो गई, अरे बाबा ने भी गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी में डाला, सारा खलास हो गया, अब हम क्या करें? एक पक्की बात जो बाबा ने मुरली में बोली है वो तो पक्का कर लो, क्या कि दुनिया के जो भी बड़े बड़े भूगोलविद हैं उनसे पूछो, वो सब जानते हैं कि दुनिया का ऐसा पहाड़ कौन सा है जो सारा का सारा गहराई तक एक ही पत्थर का बना हुआ, और वो पत्थर है ग्रेनाइट पत्थर। बड़े बड़े हिल डोल आएंगे, भूचाल आएंगे, लेकिन उस पहाड़ पर कोई असर नहीं होगा। लास्ट में जब सारी 500 करोड़ की दुनिया खलास होगी तो होने दो, हम तो नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो इसमें अनिश्चय की बात क्या है? है
सुखधाम कैसा बनेगा?
अच्छा यहाँ माउंट आबू में सुखधाम बनेगा, माउंट आबू में परमधाम बनाओगे या सुखधाम बनाओगे? हाँ परमधाम बनेगा, परमधाम में तो धन संपत्ति कुछ नहीं होती है, होगी फिर
हाँ। नहीं खरीदेगा जमीन वो कैसा जा सकते
क्या? आबू में
जो नहीं खरीदेगा,
जिनको बाबा की मुरली में विश्वास होगा वही तो खरीदेगा। सब कैसे खरीदेगा? परम धाम में जो जाने वाली आत्मिक स्थिति को धारण करने वाली आत्माएं होंगी तो सब होंगी क्या? सब होंगी है? अरे 84 जन्म लेने वाले सब होंगे क्या? जो 84 जन्म लेने वाले होंगे 4.5 लाख सो वहां पहुंच करके ठहरेंगे, नहीं होंगे देहवान वाले होंगे मरा उधर।
इसीलिए अभी से खरीदना पड़ता है।
पड़ता है कि क्या बात है, मजबूरी है क्या? मत खरीदो। पड़ता है अगर कहें मुख से तो इससे साबित होता है दिल के अंदर मजबूरी भरी हुई है।
नहीं बाबा, यमुना की कंठे पर सुखधाम बनेगा ना?
ठीक है, वो सुखधाम बनेगा तब तक हमारी आत्मा इस योग्य नहीं बनेगी, विजयमाला का मणका नहीं बनेगी। पक्का कर लिया हम विजयमाला के मणके नहीं बन गए? फिर रुद्रमाला के मणके विजयमाला में पिरोए जाएंगे। जब पिरोए जाएंगे तो विजयमाला के मणके, विजयमाला का मतलब ही है 5 विकारों पर विजय पा लेंगे, फिर परमधाम में क्यों बैठेंगे? वो सदगति में आवेंगे या गति में रहेंगे? मुक्ति धाम में रहेंगे या सदगति की दुनिया में आवेंगे? सदगति की दुनिया में आ जाएंगे।
सारी दुनिया जाएगा ना
कहाँ? हाँ, सारी दुनिया को विनाश होने दो। मनुआ माउत मरु का
शिकार,
मनु का शिकार।
सुखधाम कैसे बचेगा?
सुखधाम कैसे बचेगा? वाह, यही पता नहीं है अभी तक सुखधाम कैसे बचेगा, काशी नगरी कैसे बच गई? दिखाते हैं कि राक्षस पृथ्वी को पाताल में ले गया, पाताल में तो ले गया लेकिन जब ले जा रहा था तो काशी नगरी छिटक के अलग हो गई। एक ही नगरी ऐसी है जहां काश्य है, काश्य माने तेज, याद का तेज है, पवित्रता का तेज है, जहां गंगा भी पहुंच करके ज्ञान तलवार का रूप धारण कर लेती है। तलवार होती है ऐसी, सीधी होती है या ऐसी होती है? तलवार, इतना तीखा ज्ञान बन जाता है। वो एक ही नगरी है जो शिवशंकर को बहुत प्यारी है। भक्ति मार्ग में भी क्या कहते हैं, मरे तो कहाँ जाए? क्यों क्यों काशी नगरी में ही क्यों सदगति होगी? कहाँ की यादगार है? संपत कुमार कह रहे हैं है? ऐसे कैसे हो सकता है?
स्थूल रूप में कैसा बचेगा?
अरे स्थूल रूप में ही काशी नगरी बनेगी। स्थूल रूप में जो स्थूल दिखाया जाता है वो सूक्ष्म में ब्राह्मणों का संगठन बनता है या नहीं बनता है? स्थूल में दिल्ली दिखाई गई है, पुरानी दिल्ली भी है और नई दिल्ली भी है। तो सूक्ष्म में नई दिल्ली का पार्ट बजाने वाली, लाल पत्थरों की दिल्ली, क्रोध आग्नि वाली, और पुरानी दिल्ली है या नहीं है?
है?
और
बाबा गदगद में क्या है?
क्या कह सकते हैं बाबू बोला, गदगद सेंटर में क्या
गदगद 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 मन बहुत खुश हो जाए। तो फिर सुखधाम में लेने में जरूरत नहीं
रहेगी? माने अभी जो नई दुनिया का फाउंडेशन बाप दादा बताए रहे हैं, बाप दादा ने बताया कि नहीं? नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ चुका है तो वो स्थूल है या सूक्ष्म है? है स्थूल भी है लेकिन इन स्थूल आंखों से सबको दिखाई नहीं दे रहा है।
नहीं बाबा, एक एक खरीदना है, नहीं तो
है
कुल मिल के सभी खरीदना है।
क्या
जमीन?
हाँ,
खुद
कोई कंपल्सन बताया है? तुम्हारे पास रोटी दाल के भरपूर पैसे हैं बच्चों को खिलाने पिलाने के, फालतू बैंक में पड़ा हुआ है, इधर उधर पड़ा हुआ है, तो उससे अच्छा है कि ऐसी जगह लगाओ जहां की अभी भी देखने में आ रहा है। सारे भारत में हर शहर में प्रॉपर्टी की कीमत घट रही है और माउंट आबू की कीमत
बढ़ रही है।
क्यों बढ़ रही है और बढ़ती ही रहेगी।
लेकिन वो सभी को पता नहीं पड़ेगा।
ओहो, जो बाप के बच्चे बनेंगे उनको पता पड़ेगा, दूसरों को पता पड़ने की क्या जरूरत है?
दुनिया को पता नहीं पड़ेगा,
दुनिया को पता पड़ जाएगा तो तुमको लेने देंगे?
अगर कोई भी शरीर तोड़ देता है आत्मा से पार्टी में तो फिर भट्टी करके बाबा को मिलता है। कोई भी एडवांस पार्टी में आत्मा शरीर छोड़ लेता वो फिर बाबा का पट्टी हो पट्टी करके बाबा का मिलते
नया जन्म लेकर के।
हाँ,
क्यों नहीं करेगी? बिना पट्टी करे कैसे बाबा के बाबा से मिलेगी? और मिलेगी तो भगत बन के रह जाएगी, पट्टी करने के बाद ही तो पैदाइश मानी जाएगी।
और दोबारा
अरे पट्टी जो है वो सात दिन की भट्टी, एक दिन आना एक दिन जाना, ये नौ दिन जो है वो गुप्तवास में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए?
उस समय भट्टी चलते बाबा, शरीर छोड़ने के बाद वो फिर वो
जन्म नहीं लगी? अरे जन्म लेगी कि नहीं लेगी? आजकल छोटे छोटे बच्चे भट्टी करने नहीं चले जाते हैं? जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? भूल जाए
अंत तक भट्टी चलते,
अंत तक चलती रहेगी। और भट्टी के नियम कड़े होते जाएंगे, अभी तो फिर भी लूज होते रहते हैं, अभी भी ऐसे हैं, शादियां कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, क्लास में भी आके बैठ जाते हैं, संगठन में भी बैठ जाते हैं, बाबा के सामने भी आके बैठ जाते हैं, मना करो तो भी बैठ जाते हैं। आगे चलते ये पांडवों का किला ऐसा मजबूत बन जाएगा कि एक भी भिखारी पांव नहीं रख सकेगा। अभी तो नियम तोड़ देते हैं, ईश्वरीय नियम समझते कहाँ हैं?
भक्ति में भगवान को इतना डरते ज्ञान में कतू नहीं
डरते? ज्ञान में भगवान ऐसा दिखाई नहीं पड़ता ना, जो कि मंदिरों में पूजा जा रहा हो, सड़कों में इधर उधर मारा मारा फिर रहा है, भगवान पहचान में कैसे आएगा?
बाबा महाकाली को तेल लगाते उनमें ज्ञान नहीं पड़ता
है,
वो महाकाल महाकाली नाम का आया ना तो कैसे
महाकाल नाम आया? काम किया होगा तो नाम आया, काला काम करेगा तो महाकाल महाकाली नाम पड़ेगा।
उसमें तेल लगाते हैं महाकाली में तेल लगाते हैं।
हाँ घी थोड़े ही लगाते हैं, व्रत कहा जाता है याद, प्योरिटी से भरी पूरी जो याद है वो है व्रत। अगर इम्प्योरिटी भरी हुई है याद में, विचारी याद आ रही है तो तेल है या व्रत है? तेल है, और तेल भी भांति भांति का होता है।
बिना गणेश को हनुमान को पांच पांच मूर्ति का देना बाबा?
हाँ जी है
पांच
मूर्ति, हनुमान कहो या गणेश कहो, ये देह अभिमानी पाठधारियों की यादगार है, जिन्होंने देह अभिमान में रह करके पुरुषार्थ किया है, ऐसों की यादगार है या बिना देह भान में रहने वालों की यादगार? देह भान में रह करके ऐसा पाठ बजाया, इसलिए सीढ़ी के चित्र में जब तमो प्रधान युग होता है तब पहले पहले इसकी पूजा दिखाते हैं, गणेश और हनुमान की पैदाइश होती है। ये जानवरियत के देवता हैं, जानवरों जैसा पाठ बजाते हैं। और पहले पहले जो ब्राह्मण, तो पहले पहले देवता, पहले पहले क्षत्रिय, फिर कोई पहले पहले वैश्य, फिर पहले पहले शुद्ध बनता है। ऐसे ही ये बाप दादा जो है ना, वो पहले पहले गणेश हनुमान वो ही बनते हैं, कोई दूसरा नहीं बनता है। तो अभी संगम युग में ब्रह्मा को पांच मुख नहीं दिखाए जाते, पंचमुखी ब्रह्मा है, और शंकर को चौमुखी महादेव नहीं दिखाते हैं, है? कंपिल में ही बना हुआ है मंदिर, और
बाबा आवाज मूर्ति में आया, जो जन की सेवा करते हैं वो वहां जाकर काम करता है,
सिर्फ धन की सेवा करते,
सिर्फ धन की सेवा,
पुरुषार्थ नहीं करते।
तो फिर बीके में जाकर कोई धन की सेवा करते हैं,
बीके में तो भगवान है ही नहीं, वहाँ मिलेगा कहाँ से,
वही उनको क्या क्या फल मिलेगा,
क्या भक्ति मार्ग में क्या फल मिलता है, भक्ति मार्ग में इस जन्म में करते हैं, गुरुओं को देते हैं, अगले जन्म में मिल जाता है बस। भक्ति मार्ग में करते हैं, गुरुओं को देते हैं, एक जन्म की प्राप्ति होती है। ऐसे ही बेसिक में करते हैं, भगवान तो नहीं है, देहधारी गुरुओं को देते हैं, तो देहधारी गुरुओं से किया हुआ वो एक जन्म का फल उनको मिल जाएगा,
जैसे विदुर में उनको एक जन्म का सद्गति मिलता है।
और चाणक्य हुआ है द्वापर में, और विदुर तो संगम युग का नाम है या द्वापर युग का नाम है, विदुह, विदुह माने जानकार, जिसे बनता है वेद, वेद माने विद्वान, जिसको जानकारी है सच्चाई की, उसके मुकाबले भीष्म पितामह को सच्चाई की जानकारी नहीं है, धर्म की जानकारी उतनी नहीं है, द्रोणाचार्य को नहीं है, अश्वत्थामा को नहीं है, पांच पांडवों को भी उतनी जानकारी नहीं है सच्चाई की, इसलिए वो किसका साथ देता है, है? कौरवों का देता है, विदुर पांडवों का साथ देता है मन से, नहीं तो न्यूट्रल होके रहते हैं साक्षी दृष्ट,
कोई भी अपने बच्चा का नाम विदुर नहीं रखते
है,
कोई भी अपना बच्चा का नाम विदुर नहीं रखते,
बच्चा का नाम विदुर रखे कैसे, जानकार हैं, इतने जानकार हैं सच्चाई के, कैसे रखेंगे, और
हम लोगों के बीके में कुछ सेवा दिया ना, वो शिव बाबा दरी है ऐसे सोच के दिया ना,
भक्ति मार्ग में भी तो देते हैं
नहीं,
ये भगवान इन गुरुजी में आया हुआ, ये गुरुजी सदगुरु है, ये शिवो हम हैं, इनमें भगवान आकर के हमको पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो ऐसे दिया ना भक्ति मार्ग में, ये जल्दी मिल जाते,
वो बाबा को पहुंचते नहीं,
अरे बाबा को दिया क्या,
मैं बाबा का,
बाबा को दिया,
मैं विश्वास
है, अंधविश्वास है या विश्वास है, क्या है
उधर हम लोगों को पता,
आपको विश्वास था उधर या अंधविश्वास था, अरे क्या था है? अभी भी जो वहाँ बैठे हुए हैं वो अंधे की औलाद अंधे हैं या सोझरे हैं,
हम लोग मन ऐसा हो गया ना बाबा,
भक्तों का भी ऐसा ही मन होता है,
नारायण जो राम के पास तो धन का जा रहे ना बाबा, आठवां नारायण,
हाँ
हाँ,
कर्जा
देने का जरूरत क्या था बाबा, वो तो वहाँ तो प्रकृति सारे माया का थे,
शूटिंग कहाँ होती है, सारा राज कहाँ का है, संगम युग का राज है, संगम युग में राम वाली आत्मा बड़ा से बड़ा दुनिया का साहूकार बन जाती है, ब्राह्मणों की दुनिया का इतना बड़ा साहूकार बन जाती है कि जो आठवां नारायण सारे ब्राह्मणों की दुनिया में कंट्रोल करने वाला है, मुखिया है ब्राह्मण, बहुत मान्यता है उसकी, वो मौज उड़ाता है, हवाई जहाजों में घूमता है, मान मर्तबा लेता है, तो राजा ही डूब रही है ना। तो यहाँ की शूटिंग वो वहां के लिए बता दी, बाकी वहां की ऐसी कोई बात नहीं है, सारी बात कहाँ की है, यहाँ की है।
बदली होगा ना फिर लक्ष्मी नारायण राज्य जाकर राम राज्य आएगा ना।
सतयुग में जो चित्र है झाड़ का, वहां कोई गद्दी दिखाई है लक्ष्मी नारायण जी है? नहीं, वहां सब अनुशासन में है या अनुशासनहीन है? अनुशासन में है तो शासन किसके ऊपर करेंगे? घर में परिवार में बाप होता है तो बड़ी गद्दी जमा के बैठता है बच्चों के सामने। अरे वहां की तो राजाई का गायन है, यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा के जो बच्चे हैं उनको ऐसे मानते हैं जैसे मेरे बच्चे हैं। प्रजा का अर्थ ही होता है बच्चा, नीचे नहीं समझते कि खुद ऊंचे बैठ जाएं, उनको नीचे बैठाएं।
बाबा ये काशी नगरी बच्चे की है तो बोला है ना, तो वहीं पर सुतराम है,
वो फाउंडेशन है, स्वर्ग नहीं है, फाउंडेशन है। जैसे फाउंडेशन डाला जाता है गड्ढे में डाला जाता है या ऊपर डाला जाता है, गड्ढा करते हैं लंबा लंबा, उसमें ईंट पत्थर सब डालते हैं, फिर ऊपर दुर्म से कुटाई करते हैं। जब कुटाई करते हैं तो कोई पत्थर टूट टूट के दूर गिरते हैं, जाकर छिटक जाते हैं, कोई मजबूत होते हैं तो अड़े रहते हैं। ऐसे परीक्षा फाइनल होगी क्या? ऐसे ही नहीं बड़े बन जाएंगे। बड़ा कहाँ ना अति दुख पाऊना।
दुनिया का परिवर्तन तो ब्राह्मण बच्चे करते हैं, वो अन्नों का परिवर्तन नहीं कर सकते
है?
ब्राह्मण बच्चे राष्ट्र वाणी में ब्राह्मण बच्चे दुनिया का परिवर्तन करते हैं लेकिन अन्नों का परिवर्तन नहीं कर सकते।
अभी की स्टेज में परिवर्तन करते हैं
वो कब करते
हैं? अभी जो पुरुषार्थ की स्टेज है उस स्टेज में रहकर दुनिया का परिवर्तन करते हैं, कर रहे हैं कि खुद ही गड्ढे में जाने का अनुभव कर रहे हैं? जब संपन्न स्टेज होगी तब करेंगे। 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है वो पहले पूरा तो कर लो। कितना टाइम लगेगा? वो टाइम ही अभी पता नहीं। कृष्ण जन्म का पता हो गया, टाइम का पता नहीं है। और तब तक जो आए सो खाए चले जाओ।
देवता तो दुख नहीं भोगेगा ना?
है
देवता है दुख नहीं भोगेगा?
आप क्या समझते थे देवता है दुख भोगते?
दुख तो नहीं भोगेगा, अगर शरीर क्यों छोड़ना पड़ेगा?
है
शरीर तो छोड़ेंगे ना,
शरीर क्यों छोड़ना पड़ेगा?
शरीर देवता क्यों छोड़ना पड़ेगा?
एक होता है शरीर जबरदस्ती छोड़ना, क्या काल खाता है, जब काल खाता है ना तो कहते माने छोड़ना नहीं चाहते, जबरियन घबड़े आ रहे। अरे तो आराम से जब चाहा तब शरीर त्याग दिया। तो एक स्वेच्छा से छोड़ना और एक मजबूरी से छोड़ना अंतर नहीं है, है?
तो अंतर ही रहते हैं
क्या?
कंचन काया
रहता है, कंचन काया में जो भी काया है वो निरोगी काया को कंचन काया जाता है या कोई कंचन का शरीर बन जाता है? निरोगी होता है। निरोगी में भी दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है, देवताओं का शरीर भी चार अवस्थाओं से पसार होता है।
शरीर तो सड़ते नहीं, फिर छोड़ने का जरूरत क्या है ये पूछ।
बूढ़ा तो होता है, एज तो पूरी होती है कि नहीं होती है,
150 साल बताए।
हाँ जी, चल।